Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. So Srila Narayan Maharaj, I will speak now.
उसे पकड़ करके बोलना होगा.
मैं पकड़ता हूँ.
हरे कृष्ण.
आप बोलिए.
बोलना आरम्भ करो.
फोन पर आवाज आ रही है.
तो मैं हिंदी में बोल बतला रहा हूं. अद्वैतवाद या मायावाद के संबंध में कुछ बातें बतला रहा हूं. आधुनिक शिक्षित कुछ लोगों का यह विचार है कि वेदांत शब्द का अर्थ या तात्पर्य श्री शंकराचार्य के प्रचारित अद्वैतवाद या मायावाद से है. श्री व्यासदेव के रचित वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का शंकर भाष्य ही एकमात्र प्रमाणित है और दूसरे भाष्य अप्रमाणिक है, किंतु यह उनकी भ्रांत धारणा है. श्रीकृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों के विभाग के अनुसार उन्हें चार भागों में विभक्त किया. पुनः वेद मंत्रों का परस्पर सामंजस्य दिखलाने के लिए कि एक दूसरे के वो विरोधी नहीं है, इसके लिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की. किंतु ब्रह्म सूत्र कठिन होने के कारण साधारणों के बोधगम्य करने के लिए पुराणों की उन्होंने रचना की. पुनः स्त्रियों और शूद्रों के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना की. फिर भी उनका चित्त बहुत खिन्न था, प्रसन्न नहीं था. उसी समय देवर्षि नारद उनके आश्रम में आए और कहा कि तुमने अर्थ धर्म काम मोक्ष की जैसे महात्मा का वर्णन किया है, वैसे भगवत लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया, अतः तुम्हारा मन खिन्न है, प्रसन्न नहीं है. तुम भक्ति के समाधि योग से उन्हें देख सकते हो और फिर उसका वर्णन करना. उन्होंने वैसा ही किया और समाधि प्राप्त लीला कथाओं का जीव के कल्याण के लिए वर्णन किया. उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं. पुराणों में श्रीमद् भागवत को कहा गया है अर्थोयाम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विर्णय गायत्री भाष्य रूप असौ वेदार्थ परिवृणित. अर्थात ये श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का अर्थ है. महाभारत के अर्थ को निर्णय करने वाला है, गायत्री का भाष्य है और वेदों के अर्थ को समझाने वाला है या बढ़ाने वाला है. अतः श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का यथार्थ अर्थ प्रकाशक और अकृत्रिम भाष्य है. इस श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने स्वयं लिखा है. यह सर्वमान्य ब्रह्म सूत्र का भाष्य है. श्रीमद् भागवत में सर्वत्र अद्वैतवाद या मायावाद का खंडन किया गया है. जैसे मैं कुछ जगहों का वर्णन कर रहा हूं, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने स्तुति में कृष्ण के लिए कहा है, ज्ञाने प्रयासम उत्पास्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितांग भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभि प्रायसो जीत अजित अपित्रय त्रैलोक्यम. ज्ञान के प्रयास को जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है उसको दूर कर भगवान को प्रणाम करे, उनकी लीला कथाओं का आदर करे, तो वो अजित भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं. और भी कहा ब्रह्मा जी ने ही, श्रेयस्यक्तिम भक्ति उदस्यते विभो क्लीश्यन्ति जे केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्योन्नत जथा स्थूल तुषावघाती नाम। भगवान की भक्ति जो परम कल्याणदायक है, भगवान के प्रेम को देने लायक देने योग्य है, उसको छोड़ करके जो लोग केवल आत्मबोध के लिए आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, जगत मिथ्या है, जीव झूठा है, ऐसा जो प्रचार करते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तेषाम असौ क्लेशालेव शिष्यते, वो केवल भूसा, थोथा भूसा, कूटने के समान में केवल परिश्रम ही परिश्रम सार होता है, उनको कुछ भी लाभ नहीं होता है। और भी कहते हैं, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्तिं उत्तम भूत गुणो हरि। आत्माराम मुनि जो ब्रह्म में लीन होने जा रहे हैं, वे लोग भी भगवान की लीला कथाओं को सुन करके ऐसे आकृष्ट हो जाते हैं कि उसको छोड़ करके भक्ति का अवलंबन करते हैं। जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त भावात विशुद्ध बुद्धया आरुज्य कृष्णेन परम पदम पतंति ततो अनादृत जुष्म धान। जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, जो अपने को मुक्त मानते हैं, मुक्ति अवस्था तक पहुंचने वाले हैं, वे आरुज्य कृष्ण कृष्णेन परम पदम, वो परपत्व पहुंचने वाले ही हैं, किंतु भगवान के चरणों का अनादर करने के कारण, ये भगवान का रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, आकार नहीं है, ऐसा कर करके उनका अनादर करते हैं। निर्विशेष निराकार अव्यक्त ब्रह्म ही, निर्गुण ब्रह्म ही केवल आराध्य है, ऐसा सोचते हैं, उस पद से नीचे गिर जाते हैं। और भी जो मायावादी अद्वैतवादियों का मुख्य लक्ष्य सायुज्य भगवान में मिल जाना है, उसके लिए कहते हैं भागवत में, सालोक्य साष्टी सामीप्य सायुज्य अपियूत दीयमानम अपि न गृहणंत बिना मत सेवनं जना। हमारे भक्त लोग, श्रीमद्भागवत का कहना है, भगवान कह रहे हैं कि सालोक्य साष्टी सामीप्य और सायुज्य भगवान हमारे भक्तों को देने पर भी जो ले लो, वे लोग नहीं नहीं हमको इसे आपकी सेवा के बिना हमको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और भी कहते हैं, बदन्ति तत्व विदस्तत्तम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। बदन्ति तत्व विदस्त, जो तत्व को जानने वाले हैं, ब्रह्म तत्व को, भक्ति तत्व को और सब तत्वों को जानने वाले हैं, वे तत्वविद लोग कहते हैं कि कृष्ण ही अद्वैय ज्ञान पर तत्व हैं। उसी कृष्ण में ही जब दूर से ज्ञान के द्वारा उपासना करते हैं तब उनको ब्रह्म कहते हैं। उन अद्वैय ज्ञान भगवान को जो हमारे हृदय में साक्षी के रूप में है, वे भगवान के सच्चित के प्रतीक केवल मात्र हैं और भगवान शब्द ही उनके लिए प्रयोज्य है और कृष्ण स्वयं भगवान है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान शब्दते। इसलिए ब्रह्म जब बहुत दूर से जब कृष्ण को, भगवान को देखते हैं, तब उनकी पदनख ज्योति को का दर्शन करते हैं। इसलिए गीतोपनिषद में, गीता उपनिषद है, श्रुतियों का सार है, उसमें कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अमृतस्य अभ्यास्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्म हमारे अंग की कांति, हमारे पदनक ज्योति की ज्योति है। यदि हम नहीं रहेंगे तो हमारे अंग की शोभा कैसे रहेगी। केवल यही नहीं, मैं अमृत, अव्यय, शाश्वत शांति और शाश्वत धर्म, सुख और शांति का मैं प्रतिष्ठा हूं। ब्रह्म संहिता भी कहती है, जस प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधा विभूत विभिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजन। ब्रह्मा जी स्तुति कहते हैं, वो जो ब्रह्म है, जो उनकी विभूतियों से पृथक है, वो गोविंद जी के अंग की ज्योति है। उपनिषद में और भी देखिए स्पष्ट करके कह रहे हैं, जीव और ब्रह्म में अंतर है, पर ब्रह्म में जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। नित्यो नित्यानाम, जो नित्य हैं उनमें परम नित्य हैं। चेतनश्चेतनानाम, जो चेतन है जीव हैं उनमें मैं परम चेतन हूं। वे एक होकर के भी सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनको जो दर्शन करते हैं वही धीर हैं, उन्हीं को शांति, शाश्वती शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। जीव भगवान का अंश है, सनातन अंश है, अतः वो कैसे भगवान में मिल सकता है, ब्रह्म में मिल सकता है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, यह गीतोपनिषद में कहा गया है। जीव हमारा सनातन अंश है, वो जीव उनकी तटस्थ शक्ति से उत्पन्न है और सनातन है, कभी भी भगवान में मिलकर के, ब्रह्म में मिलकर के एक नहीं हो सकता है। और भी उपनिषद में कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं, कठोपनिषद में कहते हैं, त्वासपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो ही अनिशया शोचत मुह्यमानम जुष्टम सदा पश्यन्ति अन्नमीशस्य जदमानेति बीत शोकै महिमानेति बीत शोकै। जीव और परमात्मा अलग अलग हैं, इसी शरीर में भीतर में जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोग करता है और दूसरा ब्रह्म या परमात्मा साक्षी भगवान ये उसको देखते हैं, उसके अनुसार में उसको फल चखाते हैं। इसलिए वो दोनों जीव और ब्रह्म एक कभी नहीं हो सकते हैं, यह कोरी कल्पना है। ब्रह्म सूत्र में भी और की तो बात, शुद्ध ब्रह्म सूत्र में आनंदमयोभ्यासात आनंदमय का अभ्यास करो, ये लिखा गया है। इस सूत्र में वेदांत में और जगहों में उपनिषदों में आनंदम ब्रह्म ये कहा गया, और इसमें इस ब्रह्म सूत्र में कहते हैं आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमय आनंद स्वरूप जिसमें विग्रह है, रूप है, और वो आनंद ही आनंद है। विग्रह नहीं रहने से आनंद रहेगा कहां और गुण कहां रहेंगे, इसलिए वे आनंद के घन विग्रह हैं। इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने अपने रचित शंकर भाष्य में, जब वो किसी प्रकार से आनंदमय की व्याख्या अपने मतानुसार नहीं कर सके तो उन्होंने व्यास जी को अर्थात अपने गुरु को भ्रांत बतलाया। वो भ्रांत हैं, जो अपने गुरु को ही भ्रांत बतलाता है वो उन्हीं की ब्रह्मसूत्र का की व्याख्या कैसे कर सकता है, भाष्य कैसे कर सकता है। अतः उनकी रचित, शंकराचार्य के रचित ब्रह्मसूत्र भाष्य कपोल कल्पित है, सत्य नहीं है। आगम में कहा गया है, मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते मयो विहितम देवी कलौ ब्रह्मण मूर्तिना। हे देवी, शंकर जी कह रहे हैं महादेव देवी जी से, पार्वती जी से, मायावाद असत शास्त्र है, अद्वैतवाद असत शास्त्र है, वो प्रचंड बौद्धवाद है। भगवान के आदेश से मैंने भक्ति को छिपाने के लिए असुर लोगों से मैं ब्राह्मण के मूर्ति में ब्राह्मण के रूप में जगत में पैदा होकर के शंकराचार्य के रूप से और उनके आदेश को पालन करके भक्ति को छिपाऊंगा। इसलिए भगवत आदेश से ही भक्ति को छिपाने के लिए कलयुग में महादेव शंकर शंकराचार्य के रूप में प्रचार हुए, प्रकट हुए और मायावाद का प्रचार किया। युक्ति भी ऐसी कहती है, ये विचार कीजिए, यह सर्वमान्य है कि जगत ब्रह्म से या भगवान से उत्पन्न हुआ है, प्रकटित हुआ है। जन्मादर्श जत, ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया, जतो वायुमानी भूतानी जायन्ते जेन जातानी जीवन्ति तद भी जिज्ञास तद ब्रह्म। जिसे ये जगत उत्पन्न होता है, पालित और पोषित होकर के जीवन लाभ करता है, उसको उसी को परब्रह्म समझना चाहिए। इसलिए ये सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न है। और जब जगत उत्पन्न है तो समस्त प्राणियों के शरीर हैं। अतः सत्कारण बाद के अनुसार, कॉज एंड थ्योरी या एक्शन के अनुसार, यदि इस जगत में सारे रूप देखे जाते हैं तो इसका कारण जो ब्रह्म है उसमें भी ये रूप जरूर होना चाहिए। यदि उसमें रूप नहीं है तो उससे कैसे निकलेगा ये जगत, जितने रूप हैं कहां से आएंगे? इसलिए उसमें समस्त रूपों रूप हैं। जैसे आम का पेड़ है, उसकी गुठली बीज से ये पैदा होता है, गुठली में आम का पेड़ पत्ता फल फूल सभी कुछ उसमें है, इसी ने निकलता है। यदि कुछ ही नहीं है तो उसे कुछ कैसे निकल सकता है? फ्रॉम नथिंग एनीथिंग समथिंग और होल थिंग कैन बी क्रिएटेड, इसको समझना चाहिए। इमली के पेड़ से बीज से आम पैदा नहीं होगा, इसलिए फ्रॉम नथिंग ये क्रिएशन नहीं हुआ। भगवान शून्य नहीं है, निर्गुण नहीं है। अतः हमारे वेदों में कहा गया, अतः पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यः। पूर्ण में से पूर्ण संख्या को या किसी भी संख्या को जोड़ दो या घटा दो, वही पूर्ण ही रहता है। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव एंड प्लस इन्फिनिटिव ऑलवेज इन्फिनिटिव। इसलिए भगवान पूर्ण है। भागवत में कहते हैं, अहो भाग्यम नंद ब्रजो सवम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ओ ये नंद गांव के सभी ब्रजवासी लोग धन्य हैं, जो सबके जिनका पुत्र कृष्ण श्री कृष्ण सबका मित्र है और परमानंद स्वरूप पूर्ण सनातन ब्रह्म है। एक बात और विचार करने की है, हम शास्त्रों में निर्गुण निराकार निर्विशेष अरूप अव्यक्त आदि शब्दों को देखते हैं। ये मौलिक शब्द नहीं है, अर्थात मूल शब्द नहीं है। गुण से निर्गुण होता है, आकार से निराकार बनता है, विशेष से निर्विशेष बनता है, रूप से अरूप होता है, अरूप से रूप नहीं होता है, अव्यक्त व्यक्त से अव्यक्त होता है। इसलिए भगवान में गुण है आकार है, विशेष है, रूप है, वे जीव कल्याण के लिए कभी कभी अप्राकृत जगत से इस जगत में उतरते हैं। वे निराकार नहीं है, केवल निर्गुण माने गुण नहीं, जो उनमें गुण नहीं है। यदि गुण ही नहीं है तो वो कृपा नहीं कर सकते, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, तो ऐसे बेकार के ब्रह्म से हमें क्या जरूरत है। यहां पर निर्गुण का तत्त्व है, तात्पर्य निर्गता प्राकृत गुणा जस्मातिति निर्गुण, जिसमें प्राकृत गुण नहीं है, समस्त अप्राकृत गुणों का भंडार जिनमें है, ये निर्गुण का तात्पर्य है। इसलिए वेदांतविद रामानुज, श्रीमध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, आचार्य निम्बादित्य, बलदेव विद्याभूषण गौड़ीय वैष्णवों के, इन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है, जिसमें मायावाद और द्वैतवाद का खंडन किया गया है और सविशेषवाद की स्थापना की गई है। इसलिए ये सब प्रमाणिक हैं। अतः मायावाद या द्वैतवाद कपोल कल्पित है, इसका कोई आधार नहीं है, इसलिए वैष्णवों ने इसका खंडन किया है। संक्षेप में यही मेरा कहना है।
I will just give a brief translation, and then what way we can in another, probably in the next program, do a more detailed translation. Om Agyanti Virandhasya Jnana Jana Shalakya Chakshur Unmilitam Yen Tasmai Shri Guruve Namaha Vatsakal Guru Vesha Shripa Sandhubhya Chapatika Nam Pabnekya Vaishya Vedhu Namo Namaha.
Close the door.
So by Gurudev's order, I will try to translate some of the points that you mentioned. It's a very deep philosophical point, and I will try my best to translate what he explained in relationship to what is the real form of God and what is the difference between Mayavad or Advaitvad and the Vaishnava philosophy. Srila Gurudev explained that the modern people in general think, the Western philosophers especially, that the Shankaracharya's translation or commentary on the Vedanta Sutras is the authentic commentary on the Vedanta Sutras. But that is actually not correct. This is a misconception of the people, that the commentary of Shankaracharya is the most authentic commentary. Actually, the commentary by Srila Vyasadeva is the most authentic commentary of Vedanta Sutras. Srila Vedavyas divided the Vedas into four parts, and then again he to reconcile several things that were apparently contradictory among themselves, he wrote the Brahm Sutras. And for the ordinary people for whom it was very difficult to understand the Brahm Sutras, he wrote different Puranas. And again, for the people who were less intelligent, he wrote Srimad Mahabharata. But even after writing all these scriptures, he was not very happy. At that time, his spiritual master, Devarshi Narad, he appeared, and he explained to him that you have described dharma, but at the same time you have confused everyone. You have not clearly explained what is the meaning of dharma, and you have not described the sweet pastimes of the Supreme Lord Shri Krishna. And then he instructed Srila Vyasadeva to go in Samadhi Yoga and through that see the pastimes of the Lord and describe them for the benefit of the people of the world. Taking the instructions of his spiritual master, Shilvyasadev wrote the essence of all the Vedic scriptures that he had written, including the Vedas, the Brahma Sutras, the Vedan Sutras, the Puranas, the Mahabharata, in Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam is the authentic commentary written by Srila Vyasadeva himself on the Vedan Sutras. This is the Bhashya, or this is the commentary of Gayatri. This is the meaning or the essence of Srimad Bhagavatam, of all the Vedic scriptures. Srimad Bhagavatam is not an artificial or a concocted translation of the Vedic scriptures. This is the most authentic translation or the commentary as it is written by Srila Vyasadeva himself. Throughout Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva has several places tried to explain that Advaitvad is a misconception, and he has explained this at many places. For example, when Lord Brahma is glorifying Sri Krishna, he explains there that those who are following the path of Jnana, and through that they are trying to achieve Nirvishesh Brahm, they are not able to achieve that through the process of knowledge. But once they are able to do away with this misconception of Nirvishesh Brahm, then they are able to understand the Supreme Lord and are able to control Him by their devotional service. Brahmaji further explains that the devotion to the Supreme Lord is the most kalyandayak thing. This is the thing that is the most beneficial for the people in this world. Those people who leave the devotional service and then try to pursue the path of self-realization by pursuing the path of Nirvishesh Brahm, trying to understand the Lord in the form of Nirvishesh Brahm, they achieve nothing except for frustration, and all their efforts are completely useless. Again, in the very famous verse of Srimad Bhagavatam, the Atmaram verse, he explains again that even those who are Atmaram, or those who are completely absorbed within their self, even they are attracted by the sweet pastimes of the Supreme Lord. Therefore, bhakti is much, much superior to Advaitvad. Yes. Okay. Okay, I can ask that question from Shri Gurudev. वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो अद्वैतवादी हैं वो भी भागवतम के ऊपर बोलते हैं, तो उनका जो भागवतम है वो ऑथेंटिक नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं कुछ? वो जो कमेंट्री बोलते हैं भागवतम की,
इस पर कहते हैं जिस भागवतम जब पूछने वाला नहीं प्रियम मायावती नाम क्यों नहीं कहा गया?
वो लोग जो अद्वैतवादी जो भागवत की व्याख्या करते हैं वो व्यास के विचार के अनुकूल नहीं होता। उन लोगों ने शब्दों का तोड़ मोड़ करके अर्थ करके साइज मुक्ति का स्थान अधिक दिया है, और स्पष्ट रूप में ही व्यास जी का अपना विचार है भक्ति का, और कृष्ण स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इसको कैसे मोड़ सकते हैं वो लोग?
भागवतम जद वैष्णवानां प्रियं बताया गया,
भागवतम पुराण अम्लम जद वैष्णवानां प्रियं, वैष्णवों को प्रिय है, अद्वैतवादियों का नहीं है, उसमें उनके विचारों का खंडन है, इसलिए वो प्रमाणिक नहीं है।
गुरुदेव इज एक्सप्लेनिंग दैट श्रीमद् भागवतम इज एक्चुअली सेड दैट दिस इज भागवतम इज ओनली Priya is favorite for the Vaishnavas. The Mayavadis, since they are not able to explain Srimad Bhagavatam, they try to twist the words and twist the meanings of the different verses of Srimad Bhagavatam, and the best that they can go up, they try to explain Bhagavatam as if the purpose of Bhagavatam is Sayujya Mukti. They are not able to explain what really Bhagavatam is. So even though they have their interpretations, but they are not the authentic commentaries because they are not able to understand or explain the real essence of Srimad Bhagavatam.
What they can twist it.
सब सुनना नहीं चाहते आगे वाला युक्ति का सब सुना ही
नहीं
ये सुन लीजिए आगे का
Actually, Shri Gurudev, as we go through the translation of what he spoke, he touches upon these points very nicely. So I'll continue the translation of his lecture. In another verse in Srimad Bhagavatam, Shri Vyasadeva explains that those who consider themselves as liberated and those who are also almost at the stage of liberation, but since they are offenders at the lotus feet of the Supreme Lord, because they consider the Supreme Lord as Nirvishesh Nirakar, meaning that the Supreme Lord is formless, He has no attributes, He has no qualities, and thinking in this way, they are offenders at the lotus feet of the Supreme Lord. Therefore, even though they are almost at the stage of Mukti, they fall down from that state. This is explained in Srimad Bhagavatam. It further explains that the four type of Mukti, Salokya, Sayujya, Sarupya and Sarshti, the devotees are not at all interested in these four types of liberations. Even though the Lord Himself may want to give it to them, the devotees refuse these type of liberations. It explains further, Vadanti tat tattva vidha tattvam yad jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagwan iti shabdite, that those who understand brahm tattva, they understand these three aspects of the Supreme truth, that when you see by knowledge from a great distance with a very little understanding of the Supreme truth, then you perceive Him as all pervading Brahm or light. Just that this light is nothing but the light emanating from the nails of Sri Krishna's lotus feet. Krishna Himself in Gita Upanishad says, Brahmano hi pratishtha aham, that I am the basis of the supreme Brahman. It is explained in Srimad Bhagavatam that ete chansh kalaha punsa Krishna su bhagwan swayam, that Krishna Himself is the Supreme Personality of Godhead. So in Srimad Bhagavatam, it explains that the Supreme Truth is perceived in three different forms, the Nirvishesh Brahm, Paramatma, and finally those whose understanding is completely mature, they understand Him as the Supreme Personality of Godhead. This is something that we should try to understand here, that if we don't have a person, if we don't have a person's body, that how can there be light emanating from Him? So if the scriptures are saying that there is this light of the Brahm is the light of the Supreme Lord, then the Supreme Lord must have a personality from which this light is emanating, which is perceived incorrectly as the Supreme Absolute Truth by the Mayavadis.
किसी तरह से पूरा सुना दो
यस Yes. Yes. So Srila Gurudev explains further that this is explained very clearly in the Upanishads, that there is a definite difference between the living entity and the Supreme Absolute Truth. Nityaha Nityanam Chetano Chetananam. That he is the Supreme Eternal among all the Eternal, and he is the Supremely Conscious among all the conscious living entities. That he is the Supreme who fulfills everyone's desires. The living entity is a part and parcel of the Supreme Lord, but at the same time the living entity is not the Supreme Lord. It is in quality the same as the Supreme, but in quantity it is not the same as the Supreme. There is no way that the living entity can ever merge into the Supreme Lord. It is the tatastha shakti, or the marginal potency of the Supreme. It never becomes a part of the Supreme. It is explained in Chandogya Upanishad that Jiva and Paramatma are two separate entities, and the living entity is experiencing the results of his previous past karma in this body, and the Supreme Lord in the form of Paramatma is observing the living entity as a witness. Just like two birds sitting on a tree, one bird is eating the fruits of the tree and the other bird is observing. So the Atma and Paramatma are within us, and Paramatma is observing what the Atma is doing, but Atma and Paramatma never become one. In Brahma Sutra it says Anandamayo Abhyasat, and then it also says Anandam Brahm. So how do we reconcile these two? So someone who does not have a form, someone does not have a vigraha, How can that have any kind of anand or bliss? The bliss comes from a form. It does not come without the form. Someone who does not have a form cannot have any qualities, cannot have any kind of anand. In Shankar Bhashya, when Shankaracharya was trying to explain the Brahma Sutras, and when he came to this place of explaining Anandamaya Abhyasat, explaining what does Anandamaya means, he was not able to explain. And when he got frustrated in trying to explain the meaning of Anandamaya, he said that his guru Vyasadev was misguided. So if Shankaracharya is saying that his guru is misguided, that tells us that Shankaracharya's translation is not authentic, because if a disciple is rejecting his guru, who is a bona fide guru, then his commentary cannot be authentic. And actually, Sri Shankar, Lord Shiva himself, is telling Mayavad Asat Shastram, that this Mayavad is a misconception, is not true, and he's telling to Parvati that I will be going in Kali Yuga to the material world to hide the true bhakti from the people of this, from the unauthorized people, and I will be spreading Mayavad so that the unauthorized people cannot come to bhakti. So therefore Shankar, Lord Shiva, came as Shankaracharya to propound this philosophy of Mayavad, which in his own words is absolutely wrong. By logic also we can understand that this world, if it is generated from a supreme power, Janmadya Sayataha, then that supreme power which is maintaining this world, that supreme must have the qualities of what the qualities that we see in this world. By the theory of cause and effect, we can understand that if the effect has a form, then the cause must also have a form. So if the living entities have a form, then their creator must also have a form. Actually, he has all the forms within him. We can take an example of a mango. The mango, the seed of mango has the form of the whole tree within itself. We may not be able to perceive it, but once we sow it in the ground and then the tree manifests, the actual form of the tree is within that seed of the mango. So from anything, from nothing, something can never be created. This is a totally wrong philosophy that this world came out of nothing. This is absolutely wrong. This creation came from the Supreme Lord, who is described, glorified as Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. He is the infinite absolute truth, and from him all these worlds are created, and even from him who is infinite, when infinity is taken out, he still stays infinite. So he is absolutely complete. In Srimad Bhagavatam, it is Shri Krishna is glorified that how glorious, how fortunate are the people of Nandgaon, the Brajbasis, whose son is Shri Krishna, who is everyone's friend and who's Purna Sanatan, the Supreme Absolute Truth. In another point to understand is that in the Vedas, the words that are used, Arup, Nirgun, Nirvishesh, these are not the root words. The root word of formless or Arup is form. Formless comes from form, but the form does not come from formless. So the root word is form, not formless. So in Sanskrit also the root word is Rup, not Arup. The root word is Gun, not Nirgun. The Supreme Lord has all the transcendental qualities. He has a transcendental form, and for the benefit of the living entities in this world, sometimes he appears in this world. Nirgun does not mean that he does not have any qualities. Nirgun means that he does not have any material qualities. Similarly, Arup, Nirakar, does not mean that he does not have any form. It means that he does not have a material form. Many great Vaishnava Acharyas like Baldev Vidya Bhushan, they have written authentic commentaries on Vedanta Sutras, and in the end Sri Gurudev said that his instruction is this, that we should not get misguided by what the Advaitavadis and Mayavadis are trying to preach and concoct the true meaning of Srimad Bhagavatam and the Vedic scriptures. We should try to follow the line of Vyasadev himself and accept the real essence of Srimad Bhagavatam and try to progress on the path of bhakti. Hare Krishna.
हमारे सभी शास्त्रों के विचार से भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे बड़े दयालु हैं, कॉजलेस मर्सीफुल हैं, और सर्वगुण संपन्न हैं। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां अहेतुकी कृपा और गुणों को 16 नामों में भर दी है महामंत्र में, इसलिए ये नाम समूह इतने प्रभावशाली है कि जीवों के जो साधक महामंत्र करते हैं उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। They can take up all the endless pain of endless birth and death. और कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम को दे सकते हैं, जो कुछ चाहेंगे वही दे सकते हैं। इसलिए हरि नाम अवश्य, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Hare Ram, even, Ram, Ram Ram, Hare Ram.
Even Shankaracharya told in the end, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam, Bhaja Mulamati.
So Shri Gurudev is giving his blessings to all the audience listening. And he's telling that
the Supreme Lord is very, very merciful.
He's full of all kind of qualities, and he has put all his potency in these 16 names. And those sadhakas who chant this Maha Mantra, they certainly attain the love of the Supreme Lord. And therefore, he's requesting his audience that they should all sincerely chant the names of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And he's thanking you, Jainarayan Prabhu, and everyone for listening this, and he gives his blessings to everyone. Thank you. Hare Krishna.
And Shankaracharya told Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam.
That cut off,
Adi.
आपका भी बोलना चाहिए ना, आई कैन अरेंज फॉर यू टू स्पीक फ्रॉम एनी वेयर ऑन हिज प्रोग्राम, ही इज वेरी फेवरेबल, सो एक बार दोबारा भी कर सकते हैं
वो भी कहीं से।